डॉक्टर ट्रेम्पर लॉन्गमैन ईश्वर एक योद्धा है। सत्र चार चरण तीन ईश्वर इसराइल को उनके उत्पीड़कों से बचाता है। चरण चार यीशु ने आध्यात्मिक युद्ध को बढ़ाया और तीव्र किया। चरण पांच यीशु मानवीय और आध्यात्मिक शत्रुओं के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए फिर से आते हैं। 2024 ट्रेम्पर लॉन्गमैन और टेड हिल्डेब्रांट। यह एक योद्धा के रूप में ईश्वर पर अपनी शिक्षा में डॉक्टर ट्रेम्पर लॉन्गमैन हैं। यह सत्र चार चरण तीन है। परमेश्वर इसराइल को उनके उत्पीड़कों से बचाता है। चरण चार यीशु ने आध्यात्मिक युद्ध को बढ़ाया और तीव्र किया। चरण पांच यीशु मानवीय और आध्यात्मिक शत्रुओं के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए फिर से आते हैं। इसलिए हमने पहले दो चरणों को देखा है, वह समय जब परमेश्वर एक योद्धा के रूप में इसराइल के हाड़मांस के शत्रुओं से लड़ने के लिए आता है। यह चरण एक चरण दो है और यह ओवरलैप होता है। कालानुक्रमिक रूप से ध्यान दें चरण दो के साथ, जो कि ईश्वर इसराइल से लड़ता है, इसलिए वे अनुक्रमिक चरण नहीं हैं। यह इसराइल की ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता या उसकी कमी से अधिक निर्धारित होता है। लेकिन यह मामला है, जैसा कि हमने चरण दो को समाप्त कर दिया है, इसराइल के खिलाफ भगवान के फैसले के वर्णन के साथ, जो निर्वासन में यरूशलेम की बेबीलोनियन हार में प्रकट हुआ था। चरण तीन उसी के अनुक्रमिक है। और जब मैं चरण तीन के बारे में बात कर रहा हूँ, और याद रखें कि यह सामग्री को व्यवस्थित करने का एक तरीका है, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, यह पुराने नियम की समय अवधि के अंत में, निर्वासन के दौरान और निर्वासन के बाद की अवधि के उन भविष्यवक्ताओं का जिक्र कर रहा है, जो समझते हैं क्योंकि भगवान ने उन्हें बताया है कि यरूशलेम का विनाश निर्वासन कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि भगवान उन्हें अपने लोगों को उनके उत्पीड़कों से बचाने के लिए दिव्य योद्धा के रूप में खुद की वापसी के दर्शन देते हैं। और आइए याद रखें कि 539 ईसा पूर्व में फारसियों द्वारा बेबीलोनियों को पराजित करने के बाद उन्होंने उन यहूदियों को यरूशलेम शहर में लौटने की अनुमति दी। हालांकि एक अर्थ में 539 में निर्वासन का अंत हुआ, दूसरे अर्थ में निर्णय जारी है क्योंकि फारसवासी अब यहूदा के अधिपति हैं। और फिर जब सिकंदर महान के नेतृत्व में यूनानियों ने फारसियों को हरा दिया, तो अब वे यूनानियों के दमनकारी अंगूठे के अधीन थे। सिकंदर की मृत्यु और उसके विशाल साम्राज्य को उसके सेनापतियों के बीच विभाजित करने के बाद टॉलेमीज और मिस्र और सीरिया में सेल्यूसिड्स के बीच आगे पीछे होता रहा। और फिर जब पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान रोमनों ने परिदृश्य में प्रवेश किया, तो अब वे रोमन कब्जे की दमनकारी उपस्थिति के अधीन थे। और निस्संदेह यह हमें नए नियम के समय तक ला रहा है। लेकिन अब डैनियल, जकरिया, मलाकी और अन्य जैसे भविष्यवक्ताओं के पास वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं उन तीनों को एक उदाहरण के रूप में उपयोग करने जा रहा हूँ। वे दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान ने उन्हें दिया है कि वह वापस आने वाले थे और उन्हें उनके उत्पीड़कों से बचाएंगे। तो चलिए मैं डैनियल से शुरू करता हूँ। डैनियल की कहानी ईसा पूर्व 6 शताब्दी की है, और आप जानते हैं उसे बहुत पहले ही निर्वासन के रूप में बेबीलोन ले जाया गया था, उस समय से भी पहले जब नबूकदनेस्सर ने मंदिर को नष्ट करने और एक बड़े निर्वासन से गुजरने का फैसला किया था। लेकिन डैनियल अपने अधिकांश जीवन के दौरान बेबीलोन में रहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसका जीवन बहुत लंबा है, और भगवान उसे दर्शन देते हैं। अब डैनियल एक दिलचस्प किताब है क्योंकि इसके दो प्रमुख भाग हैं। पहले 6 अध्याय बेबीलोनियाई या फारसी दरबार में रहने वाले डैनियल और उसके 3 दोस्तों के वृत्तांत हैं। दूसरे 6 अध्याय सर्वनाशकारी दृष्टि, भविष्य के दर्शन के लिए हैं। और मैं उन 4 में से पहले पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूँ। डैनियल 7 शायद सबसे प्रसिद्ध, लेकिन यह अच्छी तरह से दर्शाता है कि मैं यहाँ किस बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि सभी 6 कहानियों और सभी 4 सर्वनाशकारी दर्शनों का अपने दर्शकों के लिए एक ही मूल संदेश है, जो कि बाहर जैसा दिखता है उसके बावजूद बुराई नियंत्रण में है। वास्तविकता यह है कि भगवान के नियंत्रण में है और अंतिम जीत उसी की होगी। इसलिए विश्वास मेजियो और घबराओ मत, और यह मत सोचो कि बुराई की अंतिम जीत होती है। एक संदेश जो आज हमारे साथ गूंज सकता है। लेकिन आइए देखें कि दानियल 7 उस विषय को कैसे प्रस्तुत करता है और यह योद्धा के आने की आशंका भी कैसे व्यक्त करता है। तो दानियल 7 को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। छंद 1 से 14 उस दर्शन का वर्णन है जो दानियल के पास है, और फिर दानियल 7:15 और निम्नलिखित उस दर्शन की एक दिव्य व्याख्या है। तो मैं पहला पढ़ने जा रहा हूँ। पहला, मुझे लगता है कि यह 14 श्लोक हैं, और यहाँ पढ़ने में व्याख्या को शामिल करूँगा। तो इसकी शुरुआत होती है बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के शासनकाल के पहले वर्ष में। दानियल ने एक सपना देखा और उसके दिमाग में ये दृश्य आए। जब वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसने अपने स्वप्न का सार लिख लिया। इस तकनीकी चर्चा में शामिल हुए बिना कि बेलशस्सर का नाबोपोलासर नाम के व्यक्ति से क्या संबंध है, जो उसका पिता था और उस समय बेलशस्सर का सहराजा भी था, मैं बस इतना ही कहूंगा कि हम यहाँ बेबीलोन साम्राज्य के अंत की ओर हैं। और वह चला जाता है। दानियल ने कहा, रात में मेरे दर्शन में मैंने देखा और मेरे सामने स्वर्ग की 4 हवाएं विशाल समुद्र को मथ रही थीं। 4 महान जानवर, प्रत्येक दूसरों से अलग, समुद्र से बाहर आ रहे थे। ठीक है, तो दानियल 7 का बहुत सारा हिस्सा हम में से कई लोगों के लिए वास्तव में अजीब लगेगा जो 21वीं सदी के पश्चिम में रह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यह वास्तव में काफी प्रसिद्ध प्राचीन निकट पूर्वी कल्पना से जुड़ा है, और इस मामले में यह विचार कि समुद्र अराजकता और यहां तक कि बुराई का प्रतिनिधित्व करता है, और इसलिए यह दृश्य एक बहुत ही अव्यवस्थित समुद्र के दृश्य से शुरू होता है जिसमें से 4 जानवर उभर रहे हैं, और चूंकि वे समुद्र से बाहर आ रहे हैं, हम उन्हें समुद्री जानवर कह सकते हैं, और समुद्री जानवरों को भी आमतौर पर सृजन विरोधी ताकतों के रूप में देखा जाता है। कहते हैं पहला सिंह के समान था और उसके पंख हुकाब के समान थे। मैं तब तक देखता रहा जब तक उसके पंख टूट नहीं गए और उसे जमीन से उठा लिया गया ताकि वह इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा हो जाए, और उसे मनुष्य का दिमाग दिया गया। और मेरे सामने एक दूसरा जानवर था जो भालू जैसा दिखता था। वह एक तरफ से ऊपर उठा हुआ था, उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थीं। उससे कहा गया था कि उठो और अपना पेट भरकर मांस खाओ। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे सामने एक और जानवर था जो तेंदुए जैसा दिखता था, और उसकी पीठ पर पक्षी के समान 4 पंख थे। इस जानवर के 4 सिर थे। इसे शासन करने का अधिकार दिया गया। खैर, इससे पहले कि मैं चौथे जानवर तक पहुंचूं, मैं यहां कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं कि स्वर्गदूत दुभाषिया बाद में हमें बताएगा कि ये जानवर दुष्ट मानव साम्राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसलिए बहुत से लोग विशिष्ट साम्राज्यों की पहचान करने में समय बिताते हैं। एक विचारधारा, एक अधिक पारंपरिक विचारधारा का कहना है कि पहले जानवर रोमन हैं, और फिर दूसरी बात, यह मादी फारसी, फिर यूनानी और फिर रोमन साम्राज्य है। और एक अन्य विचारधारा कहती है, नहीं, ये रोमन हैं, फिर मेडीज, फिर फारसी, फिर यूनानी। और मेरा अपना विचार है, मुझे नहीं लगता कि हमें उस प्रकार की विशिष्ट पहचान बनानी है, बल्कि बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक राष्ट्र उठ खड़े होंगे और परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए हम किसी विशेष राज्य की पहचान करने में नहीं उलझेंगे। इसलिए भले ही उन दोनों में से एक सही हो और यदि उनमें से एक सही हो तो भी मैं अधिक पारंपरिक दृष्टिकोण का समर्थन करता हूँ। लेकिन वास्तव में यह उस बिंदु तक महत्वपूर्ण नहीं है जिसे मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन हम जो देख सकते हैं वह यह है कि यह कल्पना इस बारे में बात कर रही है कि ये राष्ट्र परमेश्वर के लोगों के लिए कितने भयानक, निर्दयी, क्रूर और खतरनाक हैं। एक बात के लिए आपको यह एहसास हुआ कि आप जानते हैं हिब्रू वास्तव में संकरों से विमुख थे। पहला जानवर एक संकर है जिसे बांस के पंखों वाला एक शेर के रूप में वर्णित किया गया है जो एक इंसान में बदल जाता है। दूसरा संकर नहीं है लेकिन इसकी क्रूरता इसके एक तरफ से ऊपर उठ जाने और तीन पसलियों को खाने में दिखाई देती है। और फिर तेंदुआ जिसके पक्षी की तरह चार पंख होते हैं वह भी एक है जिसे जर्मन लोग मिश्वसेन या मिश्रित सार कहते हैं। और फिर भयानक, घृणित, और यह इन राज्यों की प्रकृति के बारे में बात कर रहा है जो परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन चरमोत्कर्ष चौथे जानवर पर है। इसमें कहा गया है, इसके बाद मैंने रात को अपनी दृष्टि में देखा और मेरे सामने एक चौथा जानवर था, भयानक और भयानक और बहुत शक्तिशाली। उसके बड़े बड़े लोहे के दांत थे। वह अपने शिकार को कुचलकर खा जाता था और जो कुछ बचता था उसे पैरों तले रौंद देता था। वह पिछले सभी जानवरों से भिन्न था और उसके 10 सींग थे। ठीक है, तो जैसा कि मैं अक्सर करता था, मैं अक्सर इस जानवर को रोबोबिस्ट के रूप में संदर्भित करता था, भले ही निश्चित रूप से उनके पास पहले से ही रोबोट की कोई अवधारणा नहीं थी। लेकिन हमें केवल लोहे के दांतों का ही भौतिक वर्णन मिलता है। और फिर बाद में स्वर्गदूत दुभाषिया इस विशेष जानवर के लोहे के नाखूनों का उल्लेख करेगा। लेकिन यह जानवर इतना अलौकिक है कि इसका किसी जैविक नियमित जानवर से भी कोई संबंध नहीं है। और यह भयावह है। और इसके 10 सींग हैं। अब सींग शक्ति का प्रतीक हैं। और निस्संदेह संख्या 10 एक प्रतीकात्मक संख्या है। यह कह रही है कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली जानवर है जो कल्पना में एक अत्यंत शक्तिशाली राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। फिर यह कहता है कि जब मैं सींगों के विषय में सोच ही रहा आया तो मेरे सामने एक और छोटा सा सींग निकला जो उनके बीच में निकला और पहले सींगों में से तीन उसके सामने उखाड़े गए। इस सींग की आंखें उस मनुष्य की आंखों के समान थीं जो शेखी बघारता है। तो अंतिम जोर एक सींग पर है जो संभवतः किसी राजनीतिक शक्तिशाली व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। फिर उनकी पहचान के विवरण में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस बिंदु पर केवल इस बारे में बात करते हुए कि कैसे दृष्टि के पहले भाग में हम निष्पक्ष हो रहे हैं, हमें जो मिल रहा है वह उन जानवरों का वर्णन है जो बुरी मानवीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लोगों की तरह ही भगवान के लोगों पर अत्याचार करते हैं। दानियेल के समय में परमेश्वर पर अत्याचार किया जा रहा था, पहले बेबीलोनियों द्वारा, फिर फारसियों द्वारा। दृष्टि के दूसरे भाग में दृश्य बदल जाता है और अब हम उन जानवरों के बारे में नहीं सुन रहे हैं जो बुरे इंसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि हम उन इंसानों के बारे में सुन रहे हैं जो दिव्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और यह काफी अद्भुत मार्ग है, विशेष रूप से इसके पुराने नियम के संदर्भ पर विचार करते हुए जहां भगवान की त्रिमूर्ति प्रकृति के बारे में बहुत अधिक स्पष्ट शिक्षा नहीं है। जब हम इसे नए नियम के परिप्रेक्ष्य से पढ़ रहे होते हैं तो हमें ऐसी झलकियां मिलती हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं। लेकिन यह आकर्षक है और अक्सर नए नियम में मसीह की ओर इशारा करने के रूप में उठाया जाता है। ऐसा लगता है जैसा कि मैंने देखा, सिंहासन जगह जगह स्थापित किए गए थे और प्राचीनतम ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। उसके वस्त्र बर्फ के समान श्वेत थे, उसके सिर के बाल ऊन के समान श्वेत थे, उसका सिंहासन आग से धधक रहा था और उसके सभी पहिए धधक रहे थे। उसके सामने से आग की एक नदी निकलकर बह रही थी। हजारों हजारों लोग उसमें शामिल हुए। 10,000 × 10,000 उसके सामने खड़े थे। सीट पर बैठा गया और किताबें खोली गईं। ठीक है, एंशिएंट ऑफ डेज, जो एक बहुत ही पुराने व्यक्ति को कहने का एक बहुत गहरा और सम्मानजनक तरीका है, लेकिन बूढ़ा और जर्जर नहीं, बल्कि बूढ़ा और शक्तिशाली, अपने सिंहासन पर बैठा हुआ, निर्णय देने के लिए तैयार है। यह निश्चित रूप से ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें असंख्य आध्यात्मिक प्राणी भाग लेते हैं। अब पग 13 में हम पढ़ते हैं, तब मैं देखता रहा, क्योंकि सींग घमंड की बातें बोल रहा था। मैं तब तक देखता रहा जब तक वह पशु मारा नहीं गया और उसका शरीर नष्ट होकर धधकती हुई आग में नहीं फेंक दिया गया। अन्य जानवरों से उनका अधिकार छीन लिया गया था, लेकिन उन्हें कुछ समय के लिए जीवित रहने की अनुमति दी गई थी। रात को मैंने स्वप्न में देखा और मनुष्य के पुत्र के समान कोई मेरे सामने स्वर्ग के बादलों के साथ आ रहा था। वह प्राचीन काल के पास पहुंचा, उसकी उपस्थिति में लाया गया और उसे अधिकार, महिमा, संप्रभु शक्ति दी गई। सभी राष्ट्र और हर भाषा के लोग उसकी पूजा करते थे। उसका प्रभुत्व एक शाश्वत प्रभुत्व है जो नष्ट नहीं होगा, और उसका राज्य ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होगा। ठीक है, यह वास्तव में रोमांचक और नाटकीय है, और इस पुराने नियम के संदर्भ में अप्रत्याशित है कि मनुष्य के पुत्र की तरह एक बादल पर सवार होकर प्राचीन काल की उपस्थिति में आता है। अब दानियल के समय से ही पहले के धर्म ग्रंथ में हमें बादल पर सवार यहोवा की तस्वीरें मिलती हैं। चाहे वह भजन 68 हो, भजन 104 हो, नहुम अध्याय 1 हो या यशाया 19 हो, हम आगे बढ़ते रह सकते हैं। और इससे पहले अन्य प्राचीन निकट पूर्वी संदर्भों में देवताओं, यहां तक कि बाल जैसे देवता, जो एक तूफान देवता हैं, को बादल पर सवार के रूप में चित्रित किया गया है। यहां मेरा कहना यह है कि बादल पर सवार एक दिव्य आकृति है और इसे मनुष्य के पुत्र के समान कहा जाता है। अब पुराने नियम के संदर्भ में मनुष्य के पुत्र वाक्यांश का अर्थ केवल एक मनुष्य है। यहेजकेल की पुस्तक पढ़े और आप देखेंगे कि परमेश्वर अक्सर यहेजकेल को मनुष्य के पुत्र, एक इंसान के रूप में संदर्भित करेगा। परंतु यह मनुष्य के पुत्र की सवारी नहीं है, यह मनुष्य के पुत्र के समान है जो बादल पर सवार है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि मेरे कहने का क्या मतलब है कि आपको यहाँ ट्रिनिटी के व्यक्तियों को जो कहा जाता है उसका कुछ चित्रण मिल रहा है। और जैसा कि हम बाद में टिप्पणी करेंगे, नया नियम निश्चित रूप से इसे मसीह की प्रत्याशा के रूप में मान्यता देता है, क्योंकि दानियल 7:13-14 सुसमाचार और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में शायद आधा दर्जन बार उद्धृत या उल्लेख किया गया है। तो मूल बात यह है कि यह चित्र जो हमें दानियल अध्याय 7 में मिल रहा है, वह वर्णन कर रहा है जिसे मैं चरण 3 कह रहा हूँ। यह ईश्वर का दर्शन है जो भविष्य में आएगा और वह तुम्हें तुम्हारे उत्पीड़कों से मुक्ति दिलाएगा। मनुष्य के पुत्र के समान प्राचीन काल के आदेश पर अपने लोगों को बचाने के लिए उन राज्यों में जाकर युद्ध करेगा। और इसलिए यह दृष्टिकोण उत्पीड़न के तहत जी रहे लोगों को आशा देना और उन्हें दमनकारी माहौल में रहते हुए भी विश्वास में रहना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब मैं इतना समय नहीं बिताऊंगा, लेकिन मैं आपका ध्यान कुछ अन्य अंशों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जहां हमें जकर्याह अध्याय 14 जैसा एक समान संदेश मिलता है, जकर्याह का अंतिम अध्याय, निर्वासन के बाद के भविष्यवक्ता। वह कहता है प्रभु का एक दिन आ रहा है, और यह वाक्यांश प्रभु का दिन ईश्वर के युद्ध या उसके आने वाले फैसले के भविष्य के दिन का उल्लेख कर रहा है। हे यरूशलेम, प्रभु का एक दिन आ रहा है जब तुम्हारी संपत्ति लूट ली जाएगी और तुम्हारी ही शहरपनाह के भीतर बांट दी जाएगी। मैं उसके विरुद्ध लड़ने के लिए सब राष्ट्रों को यरूशलेम में इकट्ठा करूंगा। शहर पर कब्जा कर लिया जाएगा, घरों में तोड़फोड़ की जाएगी और महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाएगा। आधा नगर निर्वासन में चला जाएगा, परंतु शेष लोगों को नगर से नहीं निकाला जाएगा। तब यहोवा बाहर जाएगा और उन राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ेगा जैसे वह युद्ध के दिन लड़ता है। उस दिन उसके पैर यरूशलेम के पूर्व में जैतून पर्वत पर खड़े होंगे और जैतून पर्वत पूर्व से पश्चिम तक दो भागों में विभाजित हो जाएगा, जिससे एक बड़ी घाटी बन जाएगी जिसमें आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर बढ़ेगा। तुम मेरी पहाड़ी तराई के पास से भागोगे, क्योंकि वह आसेल तक फैली हुई है। तुम वैसे ही भागोगे जैसे तुम यहूदा के राजा उज्जियाह के दिनों में भूकंप से भागे थे। तब मेरा परमेश्वर यहोवा और सब पवित्र लोग भी उसके साथ आएंगे। अब पवित्र लोगों का यह संदर्भ उस दिव्य सेना का संदर्भ है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। उस दिन न तो धूप होगी और न ही ठंडा ठंडा अंधेरा होगा। यह एक अनोखा दिन होगा, एक ऐसा दिन जिसे केवल प्रभु ही जानते होंगे, जिसमें दिन और रात के बीच कोई अंतर नहीं होगा। जब सांझ होगी तो उजाला होगा। उस दिन जीवित जल यरूशलेम से बाहर बहेगा, इसका आधा भाग मृत सागर में और आधा गर्मियों और सर्दियों में भूमध्य सागर में चला जाएगा। और यह युद्ध का वर्णन करने के लिए आगे बढ़ता है, पद 12 तक जाता है। यह वह विपत्ति है जिसके द्वारा प्रभु उन सभी राष्ट्रों पर प्रहार करेगा जो यरूशलेम के विरुद्ध लड़े थे। जब वे अपने पैरों पर खड़े होंगे तो उनका मांस सड़ जाएगा, उनकी आंखें अपनी कोटरों में सड़ जाएंगी, उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। उस दिन लोग यहोवा की ओर से बड़ी व्याकुलता से त्रस्त हो जाएंगे। वे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे और एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे। यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा। आसपास के सभी राष्ट्रों का धन एकत्र किया जाएगा, भारी मात्रा में सोना, चांदी और कपड़े। वैसी ही विपत्ति घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों, गधों और उन छावनियों के सब पशुओं पर पड़ेगी। इसलिए फिर से मैं पूरा अध्याय नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हमें एक समान संदेश मिल रहा है जो हमने डैनियल 7 में देखा था, जो यह है कि अभी आप एक दमनकारी स्थिति में रह रहे हैं, लेकिन भविष्य में भगवान जा रहे हैं, एक योद्धा के रूप में आओ और वह तुम्हें उत्पीड़न से बचाएगा। अंतिम उदाहरण मलाकी अध्याय 4 से होगा। निर्वासन के बाद एक अन्य भविष्यवक्ता लघु अध्याय कहता है, निश्चित रूप से वह दिन आ रहा है, यह भट्टी की तरह जलेगा। सर्वशक्तिमान यहोवा का यही वचन है कि सब अभिमानी और सब कुकर्मी खूंटी बन जाएंगे और आने वाला दिन उन्हें आग में झोंक देगा। उनके लिए कोई जड़ या शाखा न बचेगी, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का पुत्र अपनी किरणों में चंगा करता हुआ उदय होगा और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई उछल कूद मचाओगे। तब तू दुष्टों को रौंद डालेगा। जिस दिन मैं कार्य करूंगा, उस दिन वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे, सर्वशक्तिमान यहोवा का यही वचन है। मेरे दास मूसा की जो व्यवस्था और विधियां मैंने होरेब में उसको सारे इसराइल के लिथे दी थीं, उनको स्मरण करो। देख, मैं यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले एलिय्याह भविष्यद्वक्ता को तेरे पास भेजूंगा। यह माता पिता के हृदय को उनके बच्चों की ओर और बच्चों के हृदय को उनके माता पिता की ओर मोड़ देगा, अन्यथा मैं आऊंगा और भूमि पर पूर्ण विनाश कर दूंगा। इसलिए बार बार हम इन निर्वासित और निर्वासन के बाद के भविष्य वक्ताओं में उन्हें बचाने के लिए लौटने वाले योद्धा यहोवा के दर्शन सुनते हैं। और यह दृष्टि तथाकथित अंतर्विधान काल या टेस्टामेंट्स और अन्य यहूदी साहित्य के बीच की अवधि में गूंजती है। अब हम पृष्ठ को नए नियम की ओर मोड़ते हैं, और जिसे मैं चरण 4 के रूप में वर्णित करूंगा, वह तब होता है जब यीशु लड़ाई को बढ़ाते और तेज करते हैं ताकि यह आध्यात्मिक शक्तियों और अधिकार की ओर निर्देशित हो। लेकिन आइए जॉन द बैप्टिस्ट मैथ्यू अध्याय 3 से शुरू करें। जैसा कि आप जानते हैं, जॉन बैप्टिस्ट मसीहा के आगमन की आशा में जॉर्डन नदी के पास जंगल में चला जाता है और वह कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और मैं चाहता हूं कि आप देखें कि वह इस आने वाले के बारे में क्या कहता है, विशेष रूप से फरीसियों और सदूकियों और अन्य लोगों से जिन्हें वह पश्चाताप करने के लिए कह रहा है। वह मैथ्यू 3 श्लोक 7 में कहता है, मैं तुम्हें पश्चाताप के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद वह आएगा जो मुझसे भी अधिक सामर्थी है और मैं उसकी जूतियां उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका फटका कांटा उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान साफ करेगा, अपना गेहूं खलिहान में इकट्ठा करेगा और भूसी को कभी बुझने वाली आग में नहीं जलाएगा। अब मैं चाहता हूं कि आप देखें कि जॉन बैप्टिस्ट जो कर रहा है वह डैनियल, जकरिया, मलाकी और अन्य लोगों की भाषा और अपेक्षाओं को समझ रहा है। जिसे मैं बपतिस्मा दूंगा वह सारी भूसी इकट्ठा करके जला देगा और वह एक कुल्हाड़ी लेगा और सड़ी हुई लकड़ी को काट डालेगा। इसलिए वह यीशु को बपतिस्मा देता है। जब यीशु अपना मंत्रालय शुरू करता है तो जॉन को जेल में डाल दिया जाता है और यीशु अपने मंत्रालय में बीमारों को ठीक करता है, आप जानते हैं, राक्षसों का अभ्यास करते हैं, अच्छी खबर का प्रचार करते हैं और जॉन द बैप्टिस्ट, जैसा कि मैंने कहा, अंदर है जेल और उसे रिपोर्ट मिल रही है कि यीशु क्या कर रहा है और वह मन ही मन सोच रहा है, हो सकता है कि मैंने गलत आदमी को बपतिस्मा दे दिया हो। अब मैं ऐसा कैसे कहूं? खैर, मैथ्यू 11 में वह दो शिष्यों को यीशु के पास भेजता है और वे उससे कहते हैं, क्या आप ही एक हैं या आपको किसी और की आशा करनी चाहिए? और मूलतः उस प्रश्न के पीछे यह है, यीशु भूसी कहाँ जल रही है? जीसस कुल्हाड़ी कहाँ काट रही है? ठीक है, यीशु ने मैट को एक छोटे से मंत्रालय के दौरे पर ले जाकर और उसी तरह के और काम करके बीमारों को ठीक करना, राक्षसों का अभ्यास करना, अच्छी खबर का प्रचार करके जवाब दिया और वह कहते हैं, वापस जाओ और जॉन को बताओ कि तुमने क्या देखा है। तो फिर यीशु जॉन को क्या संदेश भेजना चाह रहे हैं? जॉन, आपने सही व्यक्ति को बपतिस्मा दिया है, लेकिन मैंने लड़ाई को बढ़ा दिया है और तेज कर दिया है ताकि यह आध्यात्मिक शक्तियों और अधिकार की ओर निर्देशित हो, और जॉन वह इसे स्पष्ट नहीं करता है। मैं इसे बाद के धर्मग्रंथ अंशों के आधार पर एक साथ रख रहा हूँ जो कि मैं हूँ अब बोली, लेकिन जॉन तुम इस शत्रु को मारकर नहीं हरा सकते, यह शत्रु मरने से पराजित होता है। अब हम एक क्षण में प्रश्न पर वापस आएंगे, क्या जॉन बैप्टिस्ट गलत था? उत्तर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वह गलत क्यों नहीं था। लेकिन यह मामला है, आप जानते हैं, जैसे ही यीशु को गेथसमेन के बगीचे में गिरफ्तार किया जाता है, प्रसिद्ध रूप से पीटर अपनी तलवार निकालता है और महायाजक के नौकर का कान काट देता है। यीशु उससे कहते हैं, अपनी तलवार हटा दो, यदि मैं चाहता तो मेरे पिता की असंख्य स्वर्गीय सेना यहाँ हो सकती थी, लेकिन मेरा रास्ता क्रूस तक है। और इसलिए यीशु जाते हैं और क्रूस पर मर जाते हैं और निस्संदेह पुनर्जीवित होते हैं और स्वर्ग में आरोहित होते हैं। और नहीं है, यह दिलचस्प है कि पॉल कभी कभी क्रूस पर यीशु के कार्य और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का वर्णन करने के लिए सैन्य भाषा का उपयोग करेगा। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। कुलुस्सियों अध्याय 2:13-15 से शुरू करते हुए, जब पॉल कहता है, जब आप अपने पापों में और अपने शरीर की खतनारहित स्थिति में मर चुके थे तो भगवान ने आपको मसीह के साथ जीवित कर दिया। उसने हमारे सभी पापों को क्षमा कर दिया, हमारे कानूनी ऋणग्रस्तता के आरोप को रद्द कर दिया जो हमारे खिलाफ खड़ा था, और हमें दोषी ठहराया। उसने उसे क्रूस पर चढ़ाकर दूर कर दिया। अब श्लोक 15 को बहुत ध्यान से सुने। और शक्तियों और प्राधिकारियों को निहत्था करके उन्होंने क्रूस द्वारा उन पर विजय प्राप्त करते हुए उनका सार्वजनिक तमाशा बनाया। धर्मशास्त्री इसे प्रायश्चित का ड्यूस विजेता मॉडल कहेंगे और अन्य मॉडल भी हैं, लेकिन यहाँ क्रूस पर यीशु के कार्य को एक विजय, एक सैन्य विजय के रूप में वर्णित किया जा रहा है और सार्वजनिक तमाशा उस अभ्यास का एक संदर्भ है रोमनों द्वारा इस समयावधि में कि एक बड़ी जीत हासिल करने के बाद वे कैदियों को सड़कों के माध्यम से एक प्रकार की परेड में ले जाएंगे और उस छवि का उपयोग एक अन्य पॉलिन पत्र में किया जाता है अर्थात इफिसियों 4:8 जब पॉल संदर्भ में कहता है स्वर्गारोहण के लिए यही कारण है कि यह कहता है जब वह ऊंचे पर चढ़ गया तो उसने बहुत से बंधुओं को ले लिया और अपने लोगों को उपहार दिए। अब इफिसियों 4:08 के बारे में विशेष रूप से दिलचस्प बात यह है कि पॉल भजन 68 का हवाला दे रहा है। आपको याद होगा कि हमने उन भजनों के बारे में बात की थी जो भजन संहिता की पुस्तक में युद्ध से जुड़े थे और भजन 68 एक ऐसा दिव्य योद्धा भजन है जिसे अब लागू किया जा रहा है यीशु। तो यीशु ने लड़ाई को तेज और तेज कर दिया है और अब सवाल पूछने का समय है क्या जॉन बैप्टिस्ट गलत था? और मैं पहले ही कह चुका हूं कि नहीं, लेकिन मुझे समझाने दीजिए कि मेरा मतलब क्या है। जॉन द बैप्टिस्ट गलत नहीं था, लेकिन कई भविष्यवक्ताओं की तरह वह सचेत रूप से जितना जानता था उससे बेहतर बोलता था। जैसे ही उसने मसीह के आने के बारे में बात की उसे पूरी तरह से एहसास नहीं हुआ या बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मसीह का आना दो भाग का मामला था, कि यीशु सिर्फ एक बार नहीं आ रहा था बल्कि वह भविष्य में फिर से आ रहा था। और इसलिए जब हम भविष्य में यीशु के दोबारा आने की ओर बढ़ते हैं तो हम अब 5 में हैं कि यीशु सभी बुराई, मानवीय और आध्यात्मिक के खिलाफ अंतिम लड़ाई जीतने के लिए फिर से आते हैं। तो मैं कुछ अंश पढ़ूंगा, एक संक्षेप में और एक अधिक लंबा। यीशु ने अपने दूसरे आगमन के बारे में बात की और उसने जो कहा वह मैथ्यू में दर्ज है, मेरा मतलब है Mark 13 और मैथ्यू और ल्यूक में भी, लेकिन मैं इसे पढ़ना चाहता था क्योंकि छंद 26:27 में वह कहता है उस समय लोग करेंगे मनुष्य के पुत्र को बड़ी शक्ति और महिमा के साथ बादलों पर आते देखो और वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी की छोर से लेकर आकाश की छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। आप वहां Daniel 7:13-14 की प्रतिध्वनि सुन सकते हैं, है ना? उसे मनुष्य के पुत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। वैसे बहुत से लोग जो पुराने नियम की पृष्ठभूमि को नहीं जानते हैं सोचते हैं कि यह मसीह की मानवता के लिए एक प्रकार का संकेत है, जहां भगवान का पुत्र उसके देवता के लिए एक संकेत है। और मैं जानता हूं कि इन बातों पर बहस होती है, लेकिन मेरी समझ यह है कि हम सभी ईश्वर के पुत्र हैं और इसलिए वास्तव में अगर कुछ भी है तो यह शायद उसकी मानवता पर जोर देता है, जबकि वह मनुष्य का पुत्र है जो Daniel 7:13 से जुड़ रहा है। और 14, लेकिन यह वास्तव में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में है कि हम मसीह की वापसी की कई अलग अलग तस्वीरें देखते हैं, कभी कभी बादल पर सवार होकर, लेकिन एक वापसी जहां वह अंतिम जीत हासिल करने के लिए आता है। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य 19:11 और उसके बाद, जो एक प्रकार से उसकी वापसी का चरम विवरण है। वहां लिखा है कि मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और वहां मेरे सामने एक श्वेत घोड़ा था जिसका सवार विश्वासयोग्य और सच्चा कहलाता है। अब जाहिर है यह घोड़े पर सवार यीशु का संदर्भ है। फिर ऐसा होता है वह न्याय के साथ न्याय करता है और युद्ध छेड़ता है। उसकी आंखें धधकती हुई आग के समान हैं और उसके सिर पर बहुत से मुकुट हैं। उस पर एक ऐसा नाम लिखा है जिसे उसके अलावा कोई नहीं जानता। उसने खून से सना हुआ लबादा पहना हुआ है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। अब जिनके पास देखने के लिए आंखें हैं वे सुन सकते हैं कि भजन यशाया और व्यवस्था विवरण और यहेजकेल और इसी तरह के छोटे छोटे सूक्ष्म उद्धरणों का एक पूरा समूह है, और एक संदर्भ में जहां इसका श्रेय यहोवा को दिया जा रहा है जो कि है दिव्य योद्धा, उन्हें अब यीशु पर लागू किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, वह न्याय के साथ न्याय करता है और युद्ध छेड़ता है। यह भजन 98 का संदर्भ है जिसे हमने पहले पढ़ा था। उसकी आंखें धधकती आग की तरह हैं, जो आपको यहेजकेल के दर्शन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उसने खून से सना हुआ लबादा पहना हुआ है, जो आपको यशाया 63 में यहोवा की तस्वीर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। फिर यह स्वर्ग की सेनाओं के बारे में बात करता है, जो सफेद घोड़ों पर सवार थीं और बढ़िया मलमल सफेद और साफ कपड़े पहने हुए थीं। उसके मुंह से राष्ट्रों को नष्ट करने के लिए एक तेज तलवार निकलती है। वह लोहे के राजदंड के साथ उन पर शासन करेगा, भजन 2। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के क्रोध की मदिरा की कोशिश करता है, जो यशाया की ओर इशारा करता है। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और मैंने सूर्य पर खड़े एक स्वर्गदूत को देखा, जिसने ऊंचे शब्द से आकाश में उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ कि तुम राजाओं, सेनापतियों और शूरवीर घोड़ों का मांस खाओ, और उनके सवार और सब लोगों का शरीर, क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या बड़े, क्या छोटे। फिर मैंने उस पशु और प्रेवी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से युद्ध करने के लिए इकट्ठे होते देखा, परंतु वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता भी पकड़ लिया गया, जिसने उसकी ओर से चिन्ह दिखाए थे। इन चिन्हों से उसने उन लोगों को भरमाया जिन पर उस पशु की छाप लगी थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। उन दोनों को जीवित ही जलती हुई गंधक वाली झील में फेंक दिया गया। बाकी घोड़े पर सवार के मुंह से निकली तलवार से मारे गए और सभी पक्षियों का मांस झुलस गया। तो यहाँ, जैसा कि मैं कहता हूँ, दुष्ट मानव लोगों का वर्णन है, यहाँ पर 18 राजाओं, सेनापतियों और शक्तिशाली लोगों के बारे में सोचा गया है, और फिर जानवर और झूठे भविष्यवक्ता के संदर्भ में आध्यात्मिक शक्तियों का भी वर्णन किया गया है, जिनका वर्णन पहले किया गया था प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। और इसलिए यहाँ हमारे पास यीशु द्वारा अंतिम विजय हासिल करने का वर्णन है, जिसकी बाइबल में पहले मौजूद योद्धा के रूप में भगवान की सभी तस्वीरों में भविष्यवाणी की गई है। तो अब हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां हम एक योद्धा के रूप में भगवान की इस तस्वीर पर थोड़ा विचार कर सकते हैं, व्यापक रूप से धार्मिक और नैतिक दोनों दृष्टिकोण से। यह एक योद्धा के रूप में ईश्वर पर अपनी शिक्षा में डॉक्टर ट्रेम्पर लॉन्गमैन हैं। यह सत्र 4 चरण 3 है, परमेश्वर इसराइल को उनके उत्पीड़कों से बचाता है। चरण 4, यीशु ने आध्यात्मिक युद्ध को बढ़ाया और तीव्र किया। चरण 5, यीशु मानवीय और आध्यात्मिक शत्रुओं के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए फिर से आते हैं।